नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के सामने लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और डेटा की वास्तविक शक्ति का कर रहा है प्रदर्शन। प्रधानमंत्री ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में भाजपा नेता राहुल नार्वेकर विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। आम आदमी पार्टी ने आवामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भारत ने सीरिया में जारी संघर्ष के बीच उसकी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ढाका में भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श के तहत अपने बांग्लादेशी समकक्ष जसीम उद्दीन के साथ की वार्ता। और सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का मुकाबला अब से कुछ देर बाद चाइना के डिंग लीरेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्विक है और इसका असर भी वैश्विक है। इसके लिए सरकार एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी जयपुर में आज उभरता राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व के निवेशक और विशेषज्ञ भारत को लेकर काफी उत्साहित हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का पालन करके भारत द्वार हर क्षेत्र में हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सफलता लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की शक्ति में प्रदर्शित होती है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र मजबूत है, युवा आबादी और आंकड़े देश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान न सिर्फ विकसित हो रहा है बल्कि विश्वसनीय भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और घरेलू पर्यटन में भी निरंतर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को अपनी नीतियों और फैसलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र को लगातार सशक्त बना रही है। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में देश और विदेश के 5,000 निवेशक, उद्योगपति और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधि भागीदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यही समय जब युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। अहमदाबाद में रामकृष्ण मठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने युवाओं को राजनीति सहित अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार करना होगा। श्री मोदी ने मानव जाति की भलाई के लिए आध्यात्मिकता, स्थिरता के बीच सही संतुलन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सामाजिक उत्थान में संतों के योगदान को याद किया और भारत के विकास में रामकृष्ण मिशन के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और युवाओं की इनमें सबसे बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ी स्मृतियों को भी साझा किया और गुजरात भूकंप सहित अन्य आपदाओं को कम करने में रामकृष्ण मिशन के योगदान की सराहना की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्म के साथ साथ आधुनिक विज्ञान का प्रबल पक्षधर बताया। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल नार्वेकर को आज सर्वसम्मत से महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। श्री नार्वेकर को इस पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेश किया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्री नार्वेकर को बधाई दी और विश्वास जताया कि वह निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही संचालित करके सदन की परंपरा को बनाए रखेंगे। विधानसभा की कार्यवाही आज शेष निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष कालिदास कोलंबकर ने शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसके बाद दोनों सदनों में विभिन्न अध्यादेशों को अलग अलग पेश किया गया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, बांग्लादेश के विदेश सचिव जसमुद्दीन के साथ ढाका में भारत बांग्लादेश विदेश कार्यालय परामर्श FOC में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह बैठक ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस पद्मा में आज दिन में 11 बजे शुरू हुई। श्री मिश्री आज सुबह लगभग 8:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से ढाका पहुंचे। इस बैठक के बाद विदेश सचिव दोपहर भोज में शामिल होंगे। भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश के विदेश कार्य सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात होगी। विदेश सचिवों के नेतृत्व में विदेश कार्यालय परामर्श भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक व्यवस्थागत बैठक है। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से, अवध ओझा को परगंज से, राखी बिरला को माधीपुर से, प्रवीण कुमार को जनकपुरी से और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। पिछले महीने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया, हरियाणा से रेखा शर्मा और ओडिशा से सुजीत कुमार को टिकट दिया है। झारखंड विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र नवनिर्वाचित सदस्यों के स्वागत के साथ रांची में आज शुरू हुआ। यह सत्र नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ लेने और अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बुलाया गया है। अस्थायी अध्यक्ष स्टीफन मरांडी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला रहे हैं, जो कल तक जारी रहेगा। सदस्यों के शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि कुछ मुद्दों को राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एक हालिया रिपोर्ट में जॉर्ज सरोस फाउंडेशन और एक वरिष्ठ विपक्षी नेता के बीच संबंधों का पता चला है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट आज केवल संपर्क का साधन ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का मंच बन गया है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस 2024 के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि यह मंच इंटरनेट को उत्साहजनक और सतत विकास के लिए एक शक्ति के रूप में उपयोग करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 3 वर्ष में छोटे और सीमांत किसानों के कृषि ऋण खातों की संख्या 2023-24 में बढ़कर 13.06 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में यह 11.67 करोड़ और 2022-23 में 12.38 करोड़ थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज सुबह ईमेल के माध्यम से बंद की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संजय त्यागी ने बताया कि ईमेल मिलते ही पुलिस की टीमें सभी जगहों पर पहुंच गई है। उन्होंने सभी स्कूलों और बच्चों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। श्री त्यागी ने कहा कि पुलिस ईमेल के स्रोत का पता लगा रही है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भारत ने सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी प्रच्छों से इस दिशा में काम करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वह सीरिया में स्थिति और घटनाक्रम पर नजर रखे हुए। मंत्रालय ने कहा कि दमिश्क में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए उनके संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ कथित संबंधों को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि एशिया प्रशांत में फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स नामक एक संगठन है और इसके 4 सहसंस्थापक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी एशिया प्रशांत के डेमोक्रेटिक लीडर्स फोरम के सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ने एशिया प्रशांत में फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न विरोधी कानूनों के तहत शामिल करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि देश में पारसियों की आबादी पिछले कुछ वर्षों में लगातार घट रही है। राज्यसभा में प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 1941 में देश में 1,14,000 से अधिक पारसी थे, जो 2011 की जनगणना में घटकर 57,000 रह गए। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित इन अल्पसंख्यक समूहों की आबादी में गिरावट को रोकने के लिए केंद्र द्वारा कई पहल की गई है। उन्होंने कहा कि जियो पारसी योजना शुरू की गई है जिसके तहत सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। हांगकांग में चल रहे विश्व स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2024 की महिलाओं की स्पर्धा के ग्रुप सी के शुरुआती मैच में भारत ने कोलंबिया को 2-1 से हरा दिया। भारतीय महिला टीम का सामना अगले मैच में आज दोपहर 3 बजे बेल्जियम से होगा। इस बीच भारतीय पुरुष टीम का आयरलैंड के विरुद्ध ग्रुप एफ का मुकाबला जारी है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।